जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि। हा देविका भरगत गदयाद्रवाचा जातेन तत्सदो विदण्डवतोद्भटादि अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्पिके तव गणे गणनम्। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दितचन्देवरम् यत्तं जागुतरोत समुदितम् पट्टं वरस्य विषया वृन्दारण्यनिवासिनं भजिलशब्दामाभिरानोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलसुगं ध्याय। कृपाम्बुदिरिजा परदुःखदुःखेशनातनस्तं प्रभुमाश्रया श्रीचैतन्यमनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सकृदम्। समनुपेतपेतम् द्वैपायनो विरहकातरया जिहाव पुत्रेऽपि तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। द्वैताचार्य के तत्व के संबंध में हमने बताया, यद्यपि वो पार्थ नास्तिक पांचों ये दार्शनिक मतभेद हैं विचार, उनका खंडन भी भक्ति नहीं, अथवा ये कुछ नहीं है और सृष्टि का व्यापार कैसे होता है ये भी भक्ति नहीं। तभी जो लोग इसको नहीं जानेंगे प्रचार को कर ही नहीं सकते, अधिकंतु दूसरे की बातों में आकर के भक्ति को छोड़ भी सकते हैं। इसलिए भक्ति का पक्ष स्वपक्ष तटस्थ विपक्ष ये सब जानना भी जरूरी है। इसलिए अन्नाभिलाषिता शून्य ये विपक्ष और कुछ ऐसे हैं जो तटस्थ हैं उनको भी ये सबको जानना पड़ेगा। भक्ति में भक्तिमय भक्ति संबंधी भक्ति अविरोधी भक्ति तटस्थ और भक्ति के लिए उपकार भक्ति के लिए अनुपकार ये सब चीजों को जान करके और तब भक्ति के जो अनुकूल हैं या भक्ति जो मय है ये सबको ग्रहण करना है। जो इसको नहीं जानेगा तो भक्ति के जड़ में वो प्रवेश नहीं कर सकता है, न दूसरों को समझा सकता है और न खुद ही समझ सकता है। भक्ति मय जो भाव है भक्ति बैंक भाव मैंने भक्ति का जो मूल चीज जैसे किसी का दासरस है सत्तरस है वात्सल्य है मूल भावना ही भाव है। कोई साधक में ये है ही नहीं है ये मूल भाव हमारा क्या है, कृष्ण से हमारा क्या मूल संपर्क है, तो वो भजन क्या करते हैं। इसलिए ये जब गहरे भक्ति रस में जब जाएंगे तो उनको जानना पड़ेगा, और यही चीज पीछे से स्थाई भाव होकर के आता है। ये भावमय भाव संबंधी क्या है, भाव संबंधी वह है श्रवण कीर्तन स्मरण, और उसमें भी उस भाव के संबंधी हो, परिकरों के जो भाव हैं, परिकरों के जो कृष्ण के प्रति जो है, ये सबको भी जानना पड़ेगा। और कुछ है भाव संबंध में भी कुछ स्वरूपगत हैं और कुछ ऐसे हैं जो उपादान कारण हैं, कुछ निमित्त कारण हैं। भाव के जो निमित्त कारण हैं, भाव के जो उपादान कारण हैं, कैसे समझेगा? साधारण लोगों के दिमाग से बाहर आया थी तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक वो शुद्ध भाव में प्रवेश नहीं करेगा। निमित्त उपादान कारण जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आदि से ये सब जितने हैं, साधु संग्राम के तंथात्मक श्रवण मथुरावास से समझा, ये सब निमित्त है। कुछ निमित्त कारण जो प्रेरणा देने वाले हैं, और तुम्हें प्रेरणा कौन देगा? साधुओं का संग इत्यादि है, रसिक वैष्णवों का संग है, इससे ही वो होगा। उपादान कारण खुद करेगा, अनिमित्त कारण दूसरे के द्वारा होगा। कौन दूसरा? जो रसिक वैष्णव होंगे उनके द्वारा जो प्राप्त होता है। और फिर कुछ ऐसी चीज है जो उपकारी भी नहीं है, उपकारी भी नहीं है, जैसे पुराणों का श्रवण और पुराणों के तत्वों का ये सब क्या, न तो उपकारी है न उपकारी है। तटस्थी रख लो तो, किंतु फिर भी प्रचार के लिए ये तो जानना है, किंतु भजन के लिए ये सब दूसरों को कुछ समझाना होगा। यदि कोई प्रश्न करेगा तो उसको उत्तर दे, नहीं तो ये उपकारी नहीं। पुराणों का जो श्रीमद् भागवत का अतिरिक्त और जो पुराण हैं, मान लिया है, उसके पढ़ने से क्या लाभ होगा और हानि क्या होगी? हानि भी कुछ नहीं, लाभ भी विशेष कुछ नहीं। राधा राधा जी का भाव उसमें मिलेगा, गोपियों का भाव मिलेगा, तो लाभ भी। किंतु कोई कोई ऐसा पूछ सकते हैं तो जिनको एकांतिक रूप में जिसमें रुचि है वो सब उतना आगे पढ़ते, कोई कोई पढ़ते कोई पढ़ते, कोई कोई उपकारी है उनको ग्रहण करना पड़ेगा। भजन तो नहीं है किंतु उपकारी, जैसे तुलसी में पानी देना उपकारी, वैष्णव चिन्हों का धारण करना, कुछ लोग हैं वैष्णव चिन्हों को धारण नहीं करते, तिलक माला इत्यादि नहीं लेते, तो है ये उपकारी, इसको ग्रहण करना चाहिए। कुछ अनुपकारी है, जैसे ब्रज का भाव चाहते हैं, द्वारका ध्यान इत्यादि, महिषियों का ध्यान, ऐसे लोगों का संग जो कृष्ण भजन में जिनका नहीं, ये अपकारी है, इनसे दूर रहना, नहीं तो फिर भजन ही नहीं, ये भाव एकांतिक नहीं है। इसलिए इस पर विचार करना होता है। उसी तरह से कल का जो प्रसंग था सृष्टि संबंधी अद्वैताचार्य संबंधी, उनमें कुछ तो तटस्थ है और कुछ उपकारी है। जैसे उनका भक्ति का भाव जो है, जो महाप्रभु के परिकरों के साथ में उनकी जो लीलाएं हैं और महाप्रभु के प्रति उनका जो भाव है, ये तो बहुत उपकारी है हम लोगों को, इसका जीवन चरित्र सुनने से हमको बहुत। और ये प्रकृति के उपादान कारण है और ये सब ये हम लोग जानकर कहीं क्या करेंगे नहीं, क्योंकि हाँ नहीं जानने से कोई दूसरे धर्म वाले होंगे तुम्हारे मति को विकसित कर सके, ये कुछ नहीं जानता हम दुख है इसलिए प्रचार के लिए, इसलिए उनको भी जानने की जरूरत है प्रचार में, विशेष करके प्रचार में साधारण लोगों के यहाँ ये रागानुगा भक्ति का प्रचार नहीं करेगा। प्रचार में जाने के बाद में यही सब प्रकृति से जगत की सृष्टि होती है, अपने आप स्वभाव ही है इससे हो जाता है, ऐसे ऐसे सब लोग प्रश्न करते हैं, इसलिए इस सब का भी जानना उपादान कारण के संबंध में क्या बतलाया बोलिए तो आप। अद्वैताचार्य जी सृष्टि के उपादान कारण माने क्या चल क्या करते हैं, तो यही नहीं आप लोग धारण करेंगे तो कैसे होगा, इतना परिश्रम करेंगे नहीं जानते हैं बाकी से कृष्ण के पास में बैठा हुआ है अपना देगा क्या क्या सामान है वो कौन सा सामान है जो उनको अलग से इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा कोई चीज है अलग से उनसे जो इकट्ठा करना पड़ता है उनको उपादान कारण कल बताया महत्व सहकार इत्यादि से अद्वैताचार उस प्रकृति पर इच्छा करके स्फूर्ति करा देते हैं, प्रकृति साम्य अवस्था को छोड़ करके वो अब चंचल हो जाती क्षुब्ध हो जाती अब तक भी सब जगत का। और निमित्त कारण कौन है स्वयं महाविष्णु और वैशाचार्य का वैशिष्ट्य क्या है स्वयं शक्तिमान तत्व होते हुए भी कृष्ण के प्रति महाप्रभु के प्रति मैं भक्त उनका हूँ सेवक हूँ ये भाव। कृष्ण के अतिरिक्त जितने कृष्ण के प्रकाश हैं शंकर यहाँ तक की और किसी बात क्या बलदेव प्रभु भी अपने को कृष्ण का सेवक मानते हैं, संकर्षण भी मानते हैं प्रतिम अनिरुद्ध संकर्षण सभी लोग कल ये सब चीजें बतलाया था। अद्वैताचार्य की कृपा से भी हम चैतन्य महाप्रभु को जान सकते हैं। अब हम लोग की तरफ चल रहे हैं। बैकुंठ में पहुंच गए हैं, नारद जी से बातें हो रही हैं, इनको कुछ असंतोष हो गया है, असंतोष हो गया है, बैकुंठ में इनका मन नहीं लगता। जिस बैकुंठ के लिए लोग लालायित होते हैं और बड़े बड़े बड़ी सुंदर रूप से भक्ति करते हैं और बड़ी मुश्किल से बैकुंठ प्राप्ति होती है और उस बैकुंठ में पहुंच करके अब प्रभु ने अपनी सेवा के लिए समर या भजन भी दे दिया और इनके लिए कभी कभी बाल गोपाल रूप धारण करके गोचारण के लिए भी जाते हैं, ये भी नहीं जाते हैं तो भी उनको अच्छा है। नारद जी मिल गए, नारद जी से अपना दुख कहना चाहते थे, नारद जी स्वयं जान गए और उनको उपदेश दिए, तो वही उपदेश दे रहे हैं तुम्हारा मन कुछ सुप्त देखा जा रहा है, बैकुंठ में आने पर भी तुम्हारा मन क्षुब्ध हो रहा है। एक आदमी बचपन से वृंदावन जाने की सोच रहा है, बंगाल का या बिहार का या दक्षिण प्रदेश में बहुत कुछ सोच रहा है, हाय हाय कब मैं वृंदावन जाऊँ, वहां पर यमुना में स्नान करूंगा और वहां के कुंजों में लौटूंगा फोटूंगा, कभी राधा कुंड जाऊंगा तो कभी श्याम कुंड। बहुत दिनों के बाद में उसको ऐसा संयोग मिल गया, सबको छोड़ छाड़ करके वृंदावन में आ गया। कुछ दिन वृंदावन में रहा, बड़ा भाव से पहले तो चारों तरफ में सुनता है, मिट्टी भी जगा लेता है, सब कुछ करता है, किंतु उसको कुछ चमत्कार नहीं दिखाई देता। ऐसे चमत्कार दिख जाएगा, धीरे 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 उसका बुखार उतरने लग गया, जैसे घाटा ज्वार होता है तो ज्वर ज्वर एक से चार के गिर चढ़ गया। धंधा बन जाओ गोवर्धन राधा को मिल गया तो बुखार चढ़ा, चढ़ने पर वो छोड़ दिया सब कुछ, अल्पो करके धंधा बन गया। दो चार दिन तक बिखर गया, राश में देखा ना राश में महाप्रभु जी की लीला, कृष्ण की लीला और शत्रु के, और एक मंदिर से दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, 10-20-25 मंदिरों में रोज वो और रोज परिक्रमा करता है। कोई कोई है वो दो बार तीन बार तक एक ही दिन में परिक्रमा करता है, तो यही करना है जो उसके शरीर के द्वारा हो सकता है वो सब। कुछ दिन के बाद में भाटा है, कुछ देखा नहीं, हृदय कुछ परिवर्तन नहीं, तो क्या करेगा बताओ क्या करेगा? फिर ये मिले से कुछ मिला नहीं। अरे भाई एक दो जन्मों का साधन का फल है वृंदावन, और कोई कोई है वृंदावन में उनको प्रारस आ रहा है, जहां जाते हैं आके सर हो जाते हैं, भाव में हो जाए, तो उनके लिए तो कोई प्रश्न नहीं। किंतु जो नवीन है अभी जिनका संपर्क वैसा नहीं, वो वृंदावन में खासतौर पर क्या देखेगा? तो एक जगह वो गया माधुकरी लेने के लिए, माधुकरी में जो पीछे वाला था वो आगे आ गया उसके, तो ये पिछड़ गया, तो तुम आगे क्यों आया, तो तुम क्यों आया, बस लटखन लटकी हो गई, दो चार लोगों ने उसे पीट दिया तो मन और खराब हो गया। ऐसे ही कुछ घटनाएं हुई जिससे कि उसका मन बेचारे का ये वृंदावन का दर्शन। आज जो भाव के साथ में वृंदावन रहेगा उसका मन करेगा, उसको ये सब चीजें आएंगी नहीं। अब इसके मन में ऐसा तो ये नहीं है, किंतु इसके हृदय में एक लिप्सा है। लिप्सा माने किसको कहते हैं? लोभ से लिप्सा होती है, रस अथवा वो चीज पीने की पाने की एक लालसा को लिप्सा कहते हैं, जिसको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता, वो लिप्सा जिसके अंदर में कुछ लिप्सा है। और वो कैसे आया? खरी खरी 1 करोड़ बरस करोड़ वर्ष भी कहा जाए तो बैकुंठ में गया, वहां से लौटा ब्रह्मलोक गया, वहां से लौटा कहां कहां से लौटा, इसमें कितनी जन्म और कितनी यात्रा की। आज उसके बाद में दीक्षा हुई, ऐसे नहीं बिना भजन कहीं नहीं हो गया। और वो भजन क्या कर रहा है? बाल मंत्र की उपासना कर रहा है, जिसको ब्रह्मा जी ने भी पाया, का संप्रदाय का प्रधानमंत्र करता है। उसके अंदर में अभी पूरी तो नहीं आई, किंतु वो चीज जो आ गई है लिप्सा हो, अब उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बैकुंठ एक सीमा है भक्ति प्राप्ति का, वही भक्ति का प्राप्ति का वो सीमा है बैकुंठ। हमारे शास्त्रों में भागवत के अतिरिक्त किसी भी शास्त्र में वैकुंठ को कम नहीं दिखलाया, वैकुंठ को ही सर्वोच्च स्थान देता है, इससे बढ़कर के कोई स्थान ही नहीं देता है। श्रीमद् भागवत में भी नौवें स्कंध तक जहाँ देखते हैं, बस देखते हैं कि जय भी वो अजामिल को कहाँ ले गए, प्रहलाद की गति कहाँ है, उनको ध्रुव को गति कहाँ हुई, ध्रुवों ने बैकुंठ का की, तो इसलिए इसे बढ़कर के और कहीं नहीं बताया गया। और प्राप्ति भी भक्ति का प्राप्ति स्थान भी बैकुंठ बताया गया, किंतु दो एक जगहों में देखते हैं अक्रूर को और ब्रजवासियों को कृष्ण ने अपना धाम दिखलाया, किंतु इतने संक्षेप में और इसमें ऐसे छोटे छोटे रूप में है कि साधारण आदमी जो है वो नहीं समझेगा। दो एक जगहों में उसको जो सारा ग्राही है वही देखते सब लोग नहीं। हंस कहाँ मिलते हैं, सब सरोवरों में हंस होते हैं, मानसरोवर कितने हैं, एक ही है मानसरोवर, तो वहीं पर ये मिलते हैं और जगह नहीं। हम लोग सतदल कमल को देखना चाहते हैं, इधर उधर बहुत जगह कहीं कहीं एक दल भी कमल आजकल बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से देखने का हृदय में आने मिलता है, तो ये दुर्लभ चीजें हैं। उसके हृदय में गोपाल के प्रति कुछ दर्शन की, उनके साथ में बेलागान प्रेम की कुछ इच्छा हो गई, अनियंत्रित बेलागान माने अनियंत्रित कृष्ण से प्रेम करने की स्पृहा जगी। अनियंत्रित प्रेम किसको कहते हैं, दो प्रकार से नियंत्रण होता है, घर वालों ने राधा जी को घर में बंद कर दिया या गोपियों को बंद कर दिया ना, गोपियों को बंद कर दिया घर में, जाएगी तो टांग तोड़ देंगे, पति ही परमेश्वर है हमारी सेवा करो, नहीं तो याद रखना तुम्हारा काम भी तमाम कर देंगे। काम तमाम माने जानता है कि नहीं, उस लोक में भेज देंगे ने? और समाज बदनामी कर रहा है, देखो तो अपने पति को छोड़कर के घर में जा रही, ये सब बधाएं हैं, लोक का भय है, धर्म का भय है, यह एक प्रकार का नियंत्रण है, ये बाधक नहीं है प्रेम, बल्कि ये प्रेम को प्रकाशक है और बढ़ाने वाला है। आ रहा है समझ में, ये जितना ही बाधाएं आएंगी उतना ही प्रेम उसको पार करके कृष्ण से मिलना चाहेगा, इसलिए बाधक नहीं बल्कि ये उसको वृद्धि कारक है, अनुकूल से भी ऊपर है उसको बढ़ाने, जितना ये लोग बाधा देंगे उतना ही मिलने की आकांक्षा और बढ़ करके कृष्ण। और दूसरी बाधा है अपने आप रूप क्या कहेंगे कृष्ण से मिलेंगे, कृष्ण का ऐसा भाव ऐश्वर्य भाव जिसमें ऐसा प्रेम का स्थान नहीं, उनकी भगवत्ता, कृष्ण अपनी भगवत्ता को यदि प्रकाश करें, जैसे रामलीला में अपनी भगवत्ता का प्रयास प्रकाश करते हैं, ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं, किसी दूसरी भी कोई भी किसी से भी वो बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी किशोरी उनके सामने जाएगी तो रामचंद्र जी उसका मुख देखेंगे कि नहीं, महाप्रभु जी उनका मुख देखेंगे क्या करेंगे, महाप्रभु जी तो उसका पैर का नख भी नहीं देखेंगे, राम और लक्ष्मण उसके हाथों में गले में कौन सा आभूषण वो पहने है वो नहीं जानते, पैरों का भी नहीं, ऐसे लज्जाशील और धर्मज्ञ और धर्म के प्रति गुरु है भगवान होने पर, ऐसा भाव जहां है वहां प्रेम प्रेम संकुचित रहता है। अपना हो अपना इष्ट देव, दूसरों के द्वारा दिया हुआ जो बाधाएं हैं वो अधिक नहीं बाधाएं हैं, यहां पर और सब उनको बाधा दे रहे हैं। अरे ये गोपाल गोपाल कृष्ण को गोपाल कहता है, ये क्या लोगों की पहन करके बनती, एक बांस ले लिया और उसके बांस की नली को बजा रहा है, ये क्या कृष्ण गोपियों के साथ में राज करेंगे तो बड़ी लज्जा की बात है, नारायण होकर के राज करते हैं, इसको ये लोग चिढ़ाते हैं बैकुंठ वाले को, ये बाधक नहीं है। बाधक क्या है उनको, असंतोष का कारण क्या है उनके, असंतोष का कारण है नारायण के स्वरूप में वो प्रेम ही नहीं है, प्रेम का वो प्रकाश जो ये चाहते हैं। साधारण भक्तों से प्रेम से मिल नहीं सकते, हंसी मिलकी नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, वो प्रेम बाधा द्वार में बढ़ा द्वार में, वो साधक की तरफ से रहने पर भी साध्य में वो चीज नहीं है, इसलिए इनको यहां पर प्रश्न होता है। नारद जी का कहने का यह स्वभाव है, नारद जी पहले उनको बतला करके उनको समझाना चाहते हैं कि नारायण लोक में ही रहो, किंतु वहां का तत्व तो बतला रहे हैं, इसी के माध्यम से बतला रहे हैं उनको, यहां तक आया है कि कृष्ण और कृष्ण भी अवतारी हैं, नारायण भी अवतारी हैं, नारायण अवतार बीज हैं, समस्त अवतारों के बीज हैं, जो भगवान के जो लक्षण हैं 64 गुणों में से जिनमें 60 गुण हैं, 55 गुण हैं शंकर इत्यादि, और 60 गुण हैं नारायण में पूर्ण रूप से, तो ये जो 5 गुण जो अधिक हैं उसमें 5 गुण, 55 से 60 5 गुण, जिसमें हतारी गति दायक एक, और षड़ेश्वर जी की परिसीमा वहां तक सीनाई है, और विविध अवतारावली भी तीन, और नित्य अनुपनत्व 4, और एक अपराधिक गुणों के भंडार या कुछ ऐसा, ये 5 गुण और देवताओं की अपेक्षा उन्हें अधिक, इसलिए नारायण भी भगवान हैं और अवतारावली जीव हैं, इसलिए ये अवतारी है, कृष्ण भी अवतारी है, किंतु दोनों में पार्थक्य क्या है, कल बतलाया था कि क्या अवतार है, नारायण का अवतार अवतार नहीं है, ऐसा मत कहना किंतु समझो जब किस लिए नहीं कहा गया, नारायण अपने रूप में जो वैकुंठ में जो रूप है वही रूप लेकर के इस जगत में नहीं आए, वैसे उनका हर प्रिय और जितने भी दशावतार इत्यादि हैं सब उनके के ही अवतार हैं, किंतु नारायण को अपने उषंग चक्र गदा पद्मों को लेकर के कस्तूरी और ये सब जो लक्षण है वो भगवत्ता लेकर के उसी रूप में किसी के पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में आकर के ये सब विदा नहीं है। कृष्ण का क्या है, जो लोग वृंदावन में जो कृष्ण हैं जैसे जिस रूप में बंसी वादन करते हैं गोपों के साथ में, खेलना गोपियों के साथ, ठीक उसी रूप में ही अपने धाम को और परिवारों को लेकर के उसी रूप में आते हैं जिस तरह सब का रूप, जैसे बद्री नारायण में कौन है, कौन जाने जगत सब नर नारायण, ये किन के अवतार है नारायण, अब वो नारायण ही आए हैं किंतु किस रूप में आए, नर और नारायण, नर और नारायण का रूप और नारायण का रूप एक नहीं, यहां पर बद्री नारायण नारायण और वहां पर क्या है लक्ष्मी नारायण वैकुंठाधिपति नारायण, ये दोनों में अंतर है। उसी तरह से बामन के रूप में आए, यहाँ पर लक्ष्मी भी आई किंतु यहाँ पर बामन नारायण और वहां पर है लक्ष्मी नारायण वैकुंठाधिपति। कर्णाधिशाई के रूप में आए हैं वो भी नारायण है क्योंकि वो शेष पर शयन करते हैं किंतु रूप अलग हो गया कार्य अलग हो गया। नारायण का वह रूप और वह कार्य जो वहां करते हैं यहाँ नहीं है, इसलिए नारायण का कोई अवतार नहीं। वैसे अवतार है स्वयं नारायण कर करके आते हैं किंतु कृष्ण का क्या है, कृष्ण अपने उन्हीं परिकरों को लेकर के उसी किशोर रूप को लेकर के उसी लीलाओं को लेकर के उसी वहां की धामों को लेकर के राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना चौरासी क्रोश ब्रजमंडल को लेकर के ये उनकी विशेषता है। नारायण ऐसा इसलिए कृष्ण के अवतारी का एक विशेष वहां पर जैसे भक्तों के साथ में उनका आदान प्रदान होता है ऐसे ही यहाँ पर हतारी दायपत पसंद भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब हतारी पसंद आए। हतारी मैंने हत अथवा हता हरि गति गाय उनके द्वारा जो दुश्मनी के रूप में शत्रु के रूप में मारे गए हैं उनको गति देने वाले हैं शत्रु। रामचंद्र ये नृसिंह जी वो बामन जी परशुराम जी जितने भी हैं ये सब हतारी गति। कृष्ण में ये हतारी गति दायकत्व है कि नहीं है, ये तो है ही है और भी चार गुण अधिक है किंतु ये जो ये गतियां जो पांच जो स्पेशल है इसमें भी चरम अवस्थी तक ये सभी गुण है पूर्णतम रूप में। नारायण में पूर्ण है और अवतार में पूर्ण है किंतु कृष्ण में जैसे कोई भी ऐसा अवतार नहीं है। नारायण से लेकर के विष्णु देव तक जितने भी अवतार मार करके उसे गति दे देंगे क्या, उनको मार करके ऐसा गति देंगे धन ऐश्वर्य और गति शीतल वितल और स्वर्ग ब्रह्मलोक धाम तक और ये सब जितने प्रकार की गतियां हैं ये गति देंगे किंतु मोक्ष देंगे, मोक्ष देंगे ही नहीं ऐसा नहीं, मोक्ष देंगे किंतु शत्रुओं को नहीं जिनको मारा जिन्होंने कुछ उसी रूप में भजन किया है। जैसे रामलीला में हम देखते हैं कौन ऋषि थे जो कीर्तन करते थे, सुतीक्ष्ण जी और एक थे इनके पहले सरभंग ऋषि थे। सरभंग ऋषि ब्रह्म तत्व की उपासना करते थे, सुना जे रामचंद्र जी वो ब्रह्म थे तो उनके दर्शन करने के लिए ठहर गए। ठहरने के बाद में रामचंद्र जी आए उनका दर्शन किया भैया और कहा कि प्रभु हमको अपनी गति दी। उनके शरीर से एक तेज निकला और तेज जाकर के रामचंद्र जी के शरीर में ये मोक्ष होता दुर्भागा रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्होंने मोक्ष मांग दिया कि अब दे दीजिए इसने मोक्ष दे सकते हैं राम। राम क्या जितने अवतार हैं सभी दे सकते किंतु किसी शत्रु के रूप में जो है उनको प्रेम नहीं दे सकते। मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति ही तो विष्णुवांगी लाभ भगवान के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति का नाम जो मुक्ति है ये मुक्ति का जो चरम गति है ये लोग नहीं दे सकते विशेष करके शत्रुओं को मार करके नहीं दे। और कृष्ण ऐसे हैं जिन जिन शत्रुओं को मारा है उनको सहज ही चुटकी बजाते हैं मोक्ष क्या प्रेम करते हैं राम। हाँ जो उनकी उपासना कर रहे हैं और मुक्ति चाहता है तो देखो तब तो उसको प्रेम, प्रेम माने अपना प्रेम, जिसमें जितना जिनके अवतार में है शक्ति उतना है। नारायण कह देंगे दास इत्यादि सब, रामचंद्र यह दास सब और वात्सल्य या सबका आधार पर कितना तत्व दे देंगे। और कृष्ण में है जितने भी असुरों को मार, जैसे काल नैनी को किसने मारा है? अरे वो जो काल नैनी कंस हुआ, ये दूसरा काल नैनी, इसको विष्णु के रूप में उन्होंने मारा था है? तो इस काल नैनी, ये काल नैनी को विष्णु तत्व ने मारा, किंतु उसकी मुक्ति नहीं हुई वही है? ये निशिंध जी ने हिरण्यकश्यपु को मारा और पराग जी ने हिरण्याक्ष को मारा, इन लोगों को भी मुक्ति दी। किंतु कृष्ण ने जितने भी असुरों को मारा उनकी तो सदगति मैंने मोक्ष तो हुआ ही, यहां तक कि किसी किसी लोगों को उन्होंने प्रेम तक दिया, जैसे पूतना को दिया, माता की गति बना करके आई तो उसको भक्ति उचित गति दी। भक्ति उचित माने क्या? माता की गति मत समझ लेना, और उसको ब्रज की ब्रज उसको प्राप्ति नहीं हुआ, गोलोक में स्वकीय भाव में एज ए दासी दूध पिलाने वाली ऐसी गति, नहीं तो तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, यशोदा के समकक्ष हो जाएगी। इसलिए ये नहीं, गोलोक में स्वकीय भाव में ऐश्वर्य भाव में वहां पर दासी के रूप में, तो ये कृष्ण दे सकते हैं और कोई भी अवतार नहीं, और जिसको मारेंगे वो साधारण गति आ जाएंगे। क्योंकि ये मत समझना मोक्ष देंगे ही नहीं, मोक्ष भी दे सकते हैं, अपना प्रेम भी दे देंगे। जैसे प्रहलाद महाराज जी को नृसिंहदेव जी ने क्या दिया? मोक्ष दिया? मोक्ष तो चाहते नहीं। चित्रकेतु महाराज जी थे, उनको भगवान ने क्या दिया? उन्होंने मोक्ष मांगा कि नहीं? मोक्ष नहीं चाहते थे, इसका कोई प्रमाण है श्लोक में? कोई बोलो तो याद क्यों नहीं है? पर लिखता है याद हो जाएगा कौन क्या है अरे पहला श्लोक बोलो हाँ, इसके बाद दूसरा अपना ठाउन मैंने क्या आप मुक्ति देंगे तो क्या अपनर भव न खवम पुनर, इस जगत में पुनः आना जाना ये बंद जहां हो जाता है, जिसको जो मुक्ति कहते हैं वो भी नहीं मिलता, इसने मुक्ति को भी ये छुपरा है देने पर भी भगवान नृसिंह देव जी उनको मुक्ति दे रहे थे प्रहलाद महाराज, किंतु उन्होंने भी नहीं। इसी तरह से जो भक्त लोग हैं नहीं चाहते, किंतु जब भी कोई चाहता है तो दे सकते हैं, और दिया क्या कहा चाहे जहां भी हमारा जन्म हो छह बजे, आजकल तो भी प्रकाश न होता है छह बजे, दिन बढ़ने लगे हैं 5:20 में। अच्छा ठीक, तो हाँ क्या बतला रहे हैं? नहीं आया याद, याद नहीं। हाँ प्रहलाद महाराज जी का जेसु जेसु नाथ प्रजाम्य हम तेसु तेसु अचला भक्ति अब जब विचार, कहीं भी हमारा जन्म हो हम जन्म से नहीं डरते, बत उत्तम श्लेख जनेशु सक्षम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन्माया तो आत्मजदार गेहेशु न नाथ आसक्ति। इस संसार में आसक्ति न हो मैं कहां जाऊं, और आपके चरण अब व्यभिचारी हो, अब व्यभिचारी मैंने न व्यभिचारी खीरा, जैसे व्यभिचारिणी या व्यभिचारी व्यक्ति इधर उधर दौड़ता है
ऐसा नहीं मेरी प्रति लोग, मति स्त्रीलिंग है बुद्धि, इसलिए उसको व्यभिचारिणी कहा। इसलिए अब व्यभिचारिणी हमारी बुद्धि होकर के सम्मान नहीं करो, एकांतिक रूप से उनके चरण में लग जाए और कहीं नहीं कभी दूसरी कोई चीज चाहे प्रहलाद महाराज जी के लिए सीधे दिया, इसलिए प्रेम भी दे सकते। रामचंद्र जी ने मुक्ति तीर्थ दिया, मुक्ति का वो सर्पंग इत्यादि को दे दिया। और एक चीज उनकी जो उपासना किया प्रेम से, वहां की जनकपुर की राजकुमारियों ने क्या मांगा उन्होंने, अपने प्रति आपको ही पति करके हम लोग विवाह हो तो आपके साथ। तो उनको क्या किया, उनको मुक्ति देने अपना प्रेम दिया ना, काज अच्छा रास्ता बदला दिया। मैं बहु स्त्री को धारण नहीं, एक पति प्रताप धारण करने वाला हूं। इसलिए कृष्ण लीला में तुम लोग वहां गोपियों के गर्भ में जन्म लो और वहां पर तुम सब लोगों की इच्छा, दंडकारण्य वासियों की भी इच्छा की पूर्ति की, कैसे पीती अच्छा हम लोग गोपी के क्यों कहा, एक दिन बतलाया था डायरेक्ट उनको क्यों नहीं भेज दिया, बोलो जहां पर हाँ अभिमान नहीं उत्पन्न होगा, यहां पर रह जाएगा कुछ, डायरेक्ट इसलिए नहीं भेजते। एक आदमी लॉ पास कर दिया और मजिस्ट्रेट का कोर्स या जज का कोर्स पास कर दिया, जज बना देंगे क्या करेंगे, अरे भैया ट्रेनिंग करो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और जज के साथ में कुछ दिन रहो ना? तब फिर उनको स्वतंत्र। ऐसे ही पहले वहां पर जाकर के अप्रेंटिसशिप करो, अप्रेंटिसशिप मैंने वहां जाकर के कुछ सीखना पड़ेगा व्यक्ति का ना? जैसे विवाह होने पर कोई लड़की ससुर घर में गई, लिपना पोतना बर्तन मांजना झाड़ू देना नहीं सीखा, रसोई बनाना नहीं सीखा, रोज उसको गाली सुनने करेगी ना? और जिसकी मैया ने जिसे घर वालों ने सब चीज सिखा दिया, बेटी आज तबीयत खराब है, ये नहीं कहेगी जो रसोई बना पाऊ, बेटी मेरी तबीयत खराब है जरा बर्तन भी मांज लो, जरा घर में झाड़ू दे देना, आज तो मेरी ऐसी तबीयत खराब है मैं उठ नहीं सकती, जरा जैसे तैसे रोटी तक गति बना लो। ऐसे चला के चतुराई कर करके उसको सब विद्या पारंगत करा, प्रैक्टिकल शिक्षा। ऐसे ही इस जगत में प्रैक्टिकल शिक्षा इस जगत में नहीं है, कहाँ है, जहाँ प्रति भगवान की प्रकट लीला है वहीं पर है, और कहीं नहीं है। तो वहां पर प्रैक्टिकल रूप में वहां पर नित्य सिद्धाओं के संग में अप्रेंटिसशिप में जाकर के कुछ दिनों के लिए सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट भेजने से वो अभिमान ही नहीं जाएगा। इसलिए इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि प्रकट ब्रज में जन्म होकर के या तो सत्य हो वात्सल्य हो दूर हो दास्य हो जो कोई भी हो वो वहां पर सीखना पड़ेगा। यहां पर आज प्रसंग में ही नहीं आया, उतर ही नहीं सका, प्रसंग ये चल रहा है, ये कृष्ण अवतारी है तो नारायण भी अवतारी है तो उनका क्या वैशिष्ट है। और दूसरी बात, कृष्ण के परिकरों का भी वैशिष्ट है, कृष्ण का तो वैशिष्ट है, उनके परिकरों का भी जो उनकी सेवा करने वाले हैं सेविया करने वाली है उनका भी वैशिष्ट है। कृष्ण का वैशिष्ट मुख्य नहीं है ना, कृष्ण का वैशिष्ट मुख्य नहीं है, वो तो आत्मकाम आत्माराम के चूड़ामणि है और सफेद कांच के समान है, गुलाब का फूल उस पर रख दो तो कैसा हो जाएगा उसका रंग, और पीला कनेर का फूल रख दो, कोई काला फूल है तो रख दो तो वैसा ही नहीं होगा। तो कृष्ण अपने आश्रयों के संबंध से परिकरों के संबंध से उनके रस का वैशिष्ट्य प्रकट होता है सब कुछ, किंतु जैसा उनका परिकर होगा वैसे ही। गाय की गैया चराने का कोई वहां पर है। जब किसी धूमधाम से यज्ञ हो रहा है चारों तरफ, न बेचारे ये भूई से घबरा जाए, इसलिए यहां पर इनका मन नहीं लग रहा है किसी हाल में। नारद जी बतला रहे हैं यहां पर एक प्रश्न किया है, तुम लोग अंत तक प्रश्न तो सुन रहा। पूर्व पक्ष में कहते हैं भगवान जी अजीब आदमी, वो कुछ पक्षपात करते हैं। कृष्ण ही एक ही भगवान है और सब उनका अवतार है, मूल अवतार ही कृष्ण। वो विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं और उन लोगों की उन अवतारों में सेवा ग्रहण करते हैं। कोई दास्तभाव से सेवा करता है, जैसे बराह भगवान। बराह भगवान की सेवा नवदीप धाम में वासुदेव तीर्थ करते हैं। उनकी आकांक्षा को बड़ा के इस लोक में है, वैकुंठ में तो है ही नहीं, जहां पर प्रकृति है ना अष्टम और वहां पर बड़ी सुंदर रूप धारण और लाखों करोड़ों जीव मान विनम करोड़ों जीव उनकी सेवा ना। रामचंद्र जी के दो एक परिकर हैं करोड़ों पर, जो दास्य रस से कुछ सत्तर से बहुत थोड़े से अधिकांश दास्य हुए। बामन जी की कितने सेवक लाखों करोड़ों से। तो ये तो सभी अवतारों के मूल में तो कृष्ण ही के ही तो सेवक जीव स्वरूप है, नित्य कृष्ण का, भले ही वो उन अवतारों की सेवा कर रहे हैं क्योंकि मूल में तो कृष्ण ही की सेवा करते हैं। तो कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं जो सबसे श्रेष्ठ रस है माधुर्य रस, तो वो सबको माधुर्य रस क्यों मिले? जो जीवों को किसी को मुख्य में लगा देते हैं, कहते हैं कि बड़ी कृपा आपकी कही दी हमको, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। जिसको दास्य दिया हनुमान जी को, कहेंगे भैया पिता बनकर के सेवा करेगा ना, उनको यही सेवा। जो बड़ा भगवान की सेवा कर रहे हैं वो उसी से करते हैं। जो जिस अवतार की सेवा करता है, जिसके कच्छ में आ गया, उसी को ही अपना सबसे श्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कृष्ण ऐसा करते हैं क्यों? सबको इतना सुंदर रस है जो ब्रज का भाव, तो ब्रज का भाव क्यों लिखे ऐसा क्यों? तो लोगों की रुचि के अनुसार में आपका रुचि को बनाने वाले बिगाड़ने वाले तो कुछ नहीं है, तो ऐसा ये क्यों करते हैं? तो ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता तो सब कृष्ण के हाथ में है, कृष्ण के ही हाथ में। नहीं तो जड़ क्यों होता है? उनको सभी को मधुर रस देते चेतन ही रहते, कृष्ण हाथ में क्या था? तो उसी के लिए बतला रहे हैं नारद जी, जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है इसका कारण यहां पर कोई कह सकता है कि वहां पर नारायण के रूप में कितने व्यक्ति थे, सबका मन लग रहा है वहां और ना? ये क्यों? जैसे अब आप लोगों को अयोध्या भेज दिया गया, तो बहुत से ऐसे हैं जिनका मन लग जाएगा, और कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो वहां पर सर्वरस भोजन मिले, रहने की सुंदर व्यवस्था हो जाए, सब प्रकार का हो, तो भी वो रहेंगे। वो रहेंगे अयोध्या में सब्जी का पानी कितना है ना, और सब कुछ प्रभु बड़े दयालु है। भक्त बर्तन में से
मंदिर में रहेगा जैसे इनका मंदिर। तो वही पूछ रहे हैं जी क्यों नारद जी उसका उत्तर देंगे हम लोग, उस पर थोड़ा सा विचार करके फिर हम ये टपक करके हम पहुंच जाएंगे, बिना जड़ के ही फल को पकड़ लेंगे, इसलिए सबकी आवश्यकता है। प्रवेश कुछ करने की चेष्टा कर
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरूपीनपत्नीकुर्गस्था च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णसेवाप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्थिते। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते केशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विशुभांसुते देवि प्रणमामि हरिः। हा देवि काकु हरगदगदयाद्यवाच्य अस्तमश्च जनस्मृतिके तव गणे गणनम् अङ्गश्यामनिमिषटभिरभितो मन्दीकृतीवरं जाड्जञ्जागरोचसंविदतमकर्तं वरस्वस्ति वृन्दारण्यनिवासिनं सुदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोऽप्यमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। पुरवे गौरचन्द्राजराधिकायै कृष्णभक्ताय सनातनस्तन्प्रभुनाश्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदा मह्यं ददाति सदा यं प्राप्तजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यादिभाव पुत्रेति तन्नतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा। तवैवास्मि तवैवास्मि राधे तन्नमानुचरणं कृते
नारद जी मन ही मन गोप कुमार के भावों को समझकर और उसका उत्तर दे। कभी कभी ऐसा होता है साधक अपने मन की बातों को भी अपनी दुर्बलताओं को नहीं समझता, जैसे रोगी अपना रोग निर्णय नहीं कर पाता ऐसे ही साधक अपनी दुर्बलताओं को अपनी कमियों को अपने भावों को कहाँ क्या है ये समझ नहीं है। जैसे योग्य हिषक वैद्य नाड़ी पकड़ करके या लक्षणों से उस चीज को समझ जाता है जो रोगी को खुद नहीं मालूम और मूल रोग को पकड़ता है, बुखार हो रहा है उसे बुखार की दवा नहीं देगा ना, किस चीज की दवा गई क्यों ये बुखार हो रहा है उसके लिए साधारण अनुसार जी वैद्य थी किंतु अनुभवी लोग ठीक
ऐसे ही हमारा मन भजन में नहीं लगता है। हमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो जो भजन प्रिय जो व्यक्ति हैं, हमारे मन के उन बातों को, दुर्बलताओं को, अनर्थों को, ये कहाँ से पैदा हो रहा है, उसके मूल को दूर करने के लिए उपाय करता है। ऊपर से जो लक्षण जो दिख रहे हैं, मन नहीं लगता है, इसके लिए नहीं कहेंगे। कब यार रोगी वैद्य हमारी बात ही नहीं सुनता, हम कहते हैं हमारा शरीर में मन नहीं लगता, ये बतलाव कहेंगे भजन में मन कैसे लगता है। वो कहेगा कि तुम हरी कथा, तुम कथा सुनने के पहले गुरु जी का खूब श्रद्धा से तुम सेवा करो। अरे सेवा करने से हमारा चंचल मन कैसे कमेगा, होगा। तो इसलिए वो चतुर बुद्धिमान गुरु हैं जो शिष्यों के मन की भावना को अंतर तक समझ जाते हैं, जिसको शिष्य भी नहीं वो नहीं समझते। जिस चीज को ये प्रश्न कर रहे हैं, हमारा यहां मन नहीं लगता, और जनता की इससे श्रेष्ठ और कोई स्थान भी नहीं है, किंतु लज्जा के मारे पूछ न सके। और कृषक शिरोमणि नारद जी उस चीज को पहचान गए, रोग को पकड़ लिया, और बिना पूछे ही उत्तर दे रहे हैं, तरह तरह के उत्तर दे रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि रोग से इसका कोई संबंध नहीं है, सब बातें क्यों कर, किंतु उस रोग का मूल कारण वो है जिसको ये बतला है। कुछ साधकों के लिए है। यदि हम लोग इन चीजों को, जो अनुभव की चीजें हैं, हम लोग हृदय में स्थान नहीं देंगे और पालन नहीं करेंगे, एक जन्म नहीं अनंत कोटि जन्मों में भी हमको हरि भक्ति नहीं होगी, एक दो जन्म नहीं, अनंत अनंत कोटि में भी। इसलिए इन विचारों को ग्रहण करने के लिए चित्त को तैयार करो। कहे जो जो नारद जी कह रहे हैं इनको, वो चीज यदि हमें है तो हम भी उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे, तब तो ये भजन होगा। मान लें कि अभी आगे आने वाला है, करें जो लोग लाख जन्मों का अर्चन करेंगे और वैष्णवों का आदर नहीं करेंगे, तो लाख जन्म क्या है, कोटि कोटि जन्मों में भी अर्चन का और भजन का फल क्या होगा, होगा पुण्य भी नहीं होगा, कुछ लाभ भी नहीं होगा, होगा क्या अपराधी लाभ होगा। और उसको कहते हैं कि भस्म में घी डालने के समान भी होगा, ये सब आएगा। इसलिए हम लोगों को इन चीजों को अच्छी तरह से समझ करके साथ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो कैसे साधन करना चाहिए, उनके भीतरी भीतर भावों को समझ करके ये बतलाया, तुम्हारा नहीं मन लगने का कारण उसको बतला रहे, और उसमें कृष्ण के लिए बतलाया, ये कृष्ण अवतार भी हैं और अवतारी, नारायण केवल अवतारी है, अवतार अवतारी है किंतु अवतार है, कृष्ण भी अवतारी, कर्णा दिशाई भी कभी कभी अवतारी है, जो उनसे अवतार भी करो, गर्भदशाई भी अवतारी है, इसे भी अवतार निकलते हैं, किंतु जिस रूप में है उसी रूप में अवतार मिले। कर्णा दिशाई के लाखों मुख, लाखों पाय, लाखों ये सब पूजाएं, और उस रूप में कभी भी अवतार लिया है, इसलिए अवतार तो है, अवतारी तो है किसी हालत में। खुद कृष्ण के महासंकर्षण के ये अवतार हैं, किंतु उस रूप में नहीं, या इस रूप में ही कोई अवतार नहीं, किंतु कृष्ण जैसे गुरु वृंदावन में है, भज में है, अप्राकृत अप्रकट ब्रज में वैसे ही यहाँ दिया। वहाँ के 84 क्रोश भूमि को लेकर के यहाँ पर अवतरित हो और वही लीलाएं करते हैं जो वहाँ करते हैं। इसलिए अवतारी भी हैं और अवतार भी। नारायण केवल अवतारी है, उस रूप में अवतारी नहीं होते, दूसरे रूपा में आए। कलकत्ता का नर नारायण है, नृसिंह है, बामन है, इस रूप में, उस रूप में अपने मूल रूप में नहीं होते। इसलिए ये भक्तों के साथ में क्रीड़ा विनोद जैसा कृष्ण करते हैं ये नहीं कर सकते, प्रेम भी नहीं कर सकते ऐसा। और ये है स्वरूपतः वो, इसलिए यहाँ पर इतना मन नहीं लग रहा। हम लोगों का भजन में क्यों नहीं मन लगता? इसी के सिलसिले में ये भी ये सब धीरे धीरे बतलाएंगे। तात्पर्यंतु कल्पते स्वस्व सेवानुसार तत्त रस सजातीय सुख वैचित अपेक्षा। जैसे जैसे भगवान के अवतारों का तात्पर्य है, भगवान की भगवत्ता का भी तात्पर्य है। जैसे कृष्ण नारायण है, बलदेव भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, बलदेव भी भगवान है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, जयराम कल्कि ये सभी भगवान हैं। भगवत्ता की दृष्टि से सभी बराबर हैं, तत्व की दृष्टि से, किंतु लीला के तात्पर्य से, शक्ति के प्रकाश के तात्पर्य से इनमें तात्पर्य वैशिष्ट है। उसी प्रकार से भगवान के जैसे नृसिंह देव जी के सेवक प्रहलाद महाराज, रामचंद्र जी के सेवक, इन दोनों में तात्पर्य होगा ना? इनकी सेवा में वो भी सेवा करते हैं, नृसिंह की ये भी करते हैं। तत्त्वत भगवान एक हैं, वैसे तत्त्वत भक्त भी एक हैं, किंतु सेवा में तात्पर्य और उनके फलों में भी तात्पर्य, उनके धामों में भी तात्पर्य सब। हनुमान जहाँ रहते हैं और प्रहलाद महाराज जहाँ रहते हैं, प्रहलाद महाराज जी की अपेक्षा रामचंद्र जहाँ रहते हैं उसका वैसे है। जहाँ नृसिंह जी का ये सेवा प्रहलाद महाराज जी कहाँ करते हैं? शुकल करते हैं। रामचंद्र जी की आराधना ये करते हैं अयोध्या, और अयोध्या कैसी पूरी है, उसके पास में कौन सी नदी है, कैसा स्थान है, वहीं पर पास ही में वो भरत जी का वो स्थान है नंदीगांव, कितना सुंदर रमणीय स्थान है जो गए हैं वो सब। वहां पर रामचंद्र जी इत्यादि के कितने सुंदर सुंदर वो भवन है, कई कई भवन इत्यादि, कनक भवन इत्यादि, कितनी कितनी लीला की सब वस्तु शुकल में ये सब चीजें होंगी। इसलिए भक्तों में भी तात्पर्य है, धाम में भी तात्पर्य है और प्रभु में भी तात्पर्य है। भगवान का भक्त जितना ही उन्नत कोटि का होगा, उसके आराध्य जो भगवान है उतने ही उन्नत कोटि के रस से युक्त होगा। वैकुंठ पास मूर्ति केचित वैवृत्य पार्षद परे कृष्ण से कृपया सात एक से नाम बता।
गुप्त कुमार
वैकुंठ वासियों में से कुछ लोग नित्य सिद्ध और कुछ लोग साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध है वो प्राचीन परिकर है, और जो साधन से सिद्धि लाभ किए हैं, साधन से सिद्धि उनको अर्वाचीन भक्त है, मैंने पीछे से नवीन भक्त। तो कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से वैकुंठ में जो साधक से सिद्धि लाभ किए हैं साधन भक्त, वो लोग भी हैं इनकी सेवाओं में कुछ कुछ तारतम्य भी है। कैसे तारतम्य? सेवा तो सभी है, कोई निकट से चमर सेवा कर, कोई दूर से कोई आदेश पालन कर। जैसे रामचंद्र जी हैं इस लोक में, वशिष्ठ जी रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? मंगलम भवतु, यही तो कहें आशीर्वाद। कोई कोई चीज परामर्श होगा, जैसे क्या भी कराना वशिष्ठ जी का, वो ये था ना, हाँ निषाद, निषाद रहा। राम लक्ष्मण सीता उसके यहाँ गए, तो वो लक्ष्मण जी के साथ में बैठ करके सारी रात रामचंद्र जी की गुणगाथा लक्ष्मण जी से सुनता रहा, रोता रहा, पुलकित होता रहा, रोमांचित होता रहा। सुना ना? फिर वो कुछ दूर तक उनके पास में गया, फिर रामचंद्र जी उसे लौटा दिया। ये भी तो सेवा है ना। लक्ष्मण जी दिन रात उनकी सेवा करते हैं, हनुमान जी भी उनकी सेवा पीछे से प्राप्त किया, उनकी सेवा करते। इन सेवाओं में कुछ तारतम्य है सब। सीता जी भी सेवा करते, सीता जी जब सेवा करेंगे तब सबको निकाल बाहर करेंगे सब, और सब लोग उनका आदेश पालन करेंगे। तो ऐसी सेवाओं में सब तारतम्य है, किंतु तारतम्य के वजह से कभी अपराध न कर रहे तो भाई वो उत्तम है, ये ऐसा है। वैकुंठ में जो सेवाएं होती हैं वैशिष्ट्य है, किंतु वो नीच सेवा है, वो उत्तम सेवा है, वहां पर बाबाची भी है। बाबाची ना क्या तो बाबाची, अरे बाबाची बना रहते हैं, जो रसोई बनाता है उसको बाबाची कहेंगे, और सो जाते हैं लोग नहीं। वहां इतने प्रेमसी कौशल्या नारी सीता जी गोलीला इत्यादि रसोई बना रही है, वो बाबाची हैं। यहां पर मठ में भी ऐसा भी अर्चन कर रहा है वो अर्चन है, और रसोई बना रहा है वो भी अर्चन है। तात्पर्य मत देखो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं महंत हूं यदि मैं समझू, और ये सब नीचे में कोई बाबाची है, कोई भूतक पूजक है, कोई कुछ है, तो सब चौपट हो जाए। ऐसा नहीं, सेवा का तात्पर्य है, किंतु उसमें सभी का प्रेम है। हो सकता है अपने भजन के अनुरूप किसी में प्रेम अधिक हो, किसी में कम, किंतु जब वैकुंठ पहुंचे हैं तो सबकी सेवा असाधारण और प्रेम भी असाधारण, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए वहां पर भेद नहीं है, तारतम्य और वैशिष्ट्य। ये हनुमान जी जामवान और सुग्रीव अंगद सब, जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो चुका तो सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम के साथ में सबकी सेवाएं ग्रहण की और अब विदा कर रहे हैं। सुग्रीव जी को बुलाया और सुंदर सुंदर मणियों की माला उनके गले में दिया, और गले से मिले, मैं तो तुम्हारा ऋणी, तुम नहीं रहते तो सीता जी का कहीं अनुसंधान भी नहीं होता, नहीं होता, और हम जाएंगे, मैं तुम्हारा ऋणी, तुमने जो सेवा की मैं उसका प्रतिदान, अब आप राज्य में प्रभार करके अब सेवा शुरू, और जब बुलाऊंगा तब आएंगे या मैं ही बुला। जब विदा करने लगे तो सजल नेत्रों से जाने लगे, एक एक करके सब जमवान को सबको बुला रहे हैं, अब सबसे भेंट करके और उनको भेंट देकर, किसी को कपड़ा, किसी को अलंकार, किसी को कुछ, किसी को कुछ दे। अंगद जी कहीं छिप गए, किस लिए छिप गए? जो हमको बुला करके नकवा दे, ये तुम भी जाओ। तो सबका विदा हो गया तो अंगद जी छिपे रहे, भाई अंगद कहाँ गया? तो वो हनुमान जी के पीछे छिपे हुए थे। हनुमान जी को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? और भी सबको बुला रहे हैं, कारण क्या है, है? जानते नहीं भाई, ये कारण नहीं है, ये कारण है। इसलिए कि सुग्रीव की पत्नी घर में है और लड़के बाल बच्चे और राज्य है अब समझ में आया कुछ? अच्छा, अंदर की मैया है नहीं, वो सब छोड़ दिया, सब कुछ। और लोगों के लिए प्रेम का बिंदु और कुछ कुछ है उस साथ में राम के उपस्थित के लिए, किंतु और सब लोगों को कुछ कुछ और भी स्नेह के स्थान है, किंतु हनुमान का कोई दूसरा स्थान ही नहीं है सेवा का बिंदु, रामचंद्र जी के चरणों के उनका कोई कुटीर नहीं। इन लोगों का घर राज्य भवन कुटीर इत्यादि सबकी जम उनकी गुफा विंध्याचल में अपनी गुफा और आपकी पत्नी है और ये सब है, किंतु हनुमान जी को कहेंगे तो हनुमान जी कहेंगे प्रभु कहाँ जाऊं, हमने तो कुटीर ही बनाई नहीं, मैया बाप दी आपकी, हमारे सर्वस्व आप, आपका चरणों की चरण ही हमारी कुटी है, हमारा और कोई है नहीं। इसलिए रामचंद्र जी ने देखा कि इसका तो कुछ है ही नहीं हमारे अतिरिक्त, इसको कहते हैं अकिंचनता, अकिंचन। हनुमान जी अकिंचन थे और सभी लोगों में कुछ ही, बल्कि सुग्रीव जी ने ये कहा है कि माता पिता भाई बंधु राज्य पुत्र परिवार सब छोड़ करके आपकी मैं सेवकाई करूं, यही आप बढ़ता है, सब छोड़ी करहूं तुम्हें सेवकाई, ऐसा उसने। इसलिए भाई भगवान को भजन करने के लिए जब तक हमारा कृष्ण और दूसरा कोई भी बिंदु रहेगा प्रेम के लिए, तो भाई वो कहेंगे अच्छा लौटा दे। बीजपत्नियों के लिए भी इसीलिए लौट आया, घरों उनके घर और ये सब कुछ है और उनके सभी लोग हैं, पुत्र भी हैं, कन्या भी है, पति भी अभी है, किंतु गोपियों को पुत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, और यदि कुछ था भी तो उन्होंने हृदय से सबको लोग दिया। इसलिए जब तक हम लोगों में शक्ति चमता रहेगी तब तक भैया नहीं होगा, इसीलिए सुग्रीव जी को सबको लौटा दिया और इनको भी बेचारे युवराज को भी युवराज बनाया था ना, तो युवराज पद भी था, हनुमान जी को युवराज पद या कोई पद था, कोई पद नहीं था, बस राम से भूल करके भी मैं आपके सेवक के अतिरिक्त और कुछ में नहीं हूं, सब मेरे लिए क्या है वो, हाँ मैं सेवक मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह भाव जाय जन भूल करके कि यह भाव न जाए, बस यही एक उनका है, इसलिए हनुमान जी को मिला। तो हम लोगों को भी ऐसा कुछ भाव होगा तो वो विदा कर देंगे, आज वो निष्किंचन हो जाएगा हमारे रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी जी से, उनको वो नहीं लौटा। तो बैकुंठ वासियों में ऐसे ही सेवा का तारतम्य और वैशिष्ट हुआ करना, इन सबको जो तत्व से समझने वाले वही समझेंगे, साधारण लोग नहीं समझेंगे। भजनानंद सामने मन, भजन में जो आनंद है, भजन माने क्या सेवा, बैकुंठ में भजन नहीं है सेवा, क्या समझ? अरे वो आएगा धीरे धीरे, वही तो वैद्य है ना, नाड़ी देखते हैं, यहाँ की नाड़ी देखने से देख करके वहां का नाड़ी पैर का नाड़ी पकड़ लिया और वहीं से सब देख रहे हैं और बदला रहे हैं, एक एक करके बदला है, वो आएगा जो मूल कारण है उसका निदान करते हैं, उसके लिए औषधि, बुखार के लिए नहीं, बुखार अपने आप उतर जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई घाव हो गया है, ठीक करते हैं, यदि घाव ठीक हो जाएगा तो अपने आप बुखार भी ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम सब ठीक हो जाएगा, उसी लिए हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द के लिए यहाँ पर लगाने के लिए नहीं देंगे, वो किस लिए हो रहा है सिर दर्द, हार्ट में रक्त नहीं पहुंच रहा है इसलिए यहाँ पर वो दर्द हो रहा है, वहां रक्त नहीं पहुंच रहा है ना, अब रक्त वो कैसे यहाँ पर पहुंचे उसकी वो व्यवस्था करेंगे। कहीं भैया इसके लिए अधिक नहीं है, 75,000 रुपये की इसको गो करने के लिए अरे मलहम बाजार से ले आएंगे लगा लेंगे, वो नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं उनका उत्तर भी समझना असाधारण बात नहीं है, जो इन चीजों को समझ कर जिन करेगा भाई और ऐसे सत्संग में रहेगा वही भक्ति हो जाएगी, और नहीं तो आगे ये बतला रहे हैं उसको हम सुना। तो भजनानंद साम्य मत, हनुमान के प्रहलाद के दोनों की सेवा में भजन में आनंद है, और ऐसा आनंद है जैसे वृंदावन में रह करके कोई सेवा करता है, भजन में आनंद आता है। और एक कनिष्ठ अधिकारी मान लिया कहीं दूसरी जगह वो भी भजन करता है कुछ, वो समझता है कि हमारे समान और कोई है ही नहीं, हमारा आनंद खूब हो रहा है, कहीं भी उसको कहीं जाने की कहीं जाएगा ही नहीं, हम बस हो सकते। और बल्कि वृंदावन में ये रोज पुजारी को तेज न, वो खोलने की आज तेज है, क्या बतला रहा है वो भी सोच रहा है, एक आदमी कीर्तन कर रहा है, एक आदमी खोल बजा रहा है, एक आदमी करताल बजा रहा है, वो सोचता है कि यदि करताल में कितने तरह से रंग बिरंग ढंग से बजाता है ना, कोई भक्त आता है ना कितने ताल उसमें से निकालता है, वो भी समझता है कि मैं खुद बजा रहा हूँ, आज जो मृदंग बजाता है वो सोचता है कि हम नहीं बजाएंगे तो इसका कीर्तन, आज जो कीर्तन कर रहा है कीर्तन में भी बहुत आनंद उसको आ रहा है, किंतु जब तात्पर्य से विचार किया जाएगा तो केवल खोल बजाने से ही आपका ताल बजाने से कीर्तन नहीं होगा, केवल करताल बजाए दिन भर 15 करताल बजाए या 50 मृदंग बजाए, खूब अच्छी अच्छी सोने से मढ़ी हुई करताल ये मृदंग बजाए, और एक आदमी बिना करताल खोल लिए हुए और वो कीर्तन करता बिंदु दिया करय एयिका से तिनापेक्षा सफल सहने बल दिया कर निज माने सकल ए सम्मान करत करी ते सकती देह नाथ यथा जत कबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध करो, और कहते हुए भावना से और आंसू से आंसू की धारा के अब कीर्तन में उस खोल बजाने वाले को भी आनंद आ रहा है, करताल बजाने वाले को भी आ रहा है, और जो भाव से ऐसा कीर्तन कर रहा है उसका आनंद और उन लोगों का आनंद में तारतम्य होगा कि नहीं, और ये कीर्तन कीर्तन है, कीर्तन तो खूब मर्दाने स्वर से कर रहे हैं, खूब खूब से खूब जमा दिया, खूब जमा दिया एक दम, किंतु तनिक भी भाव ने देखा जैसे यहाँ पर रहने वाले को वाह 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 कीर्तन खूब जमा, इसलिए भाव के साथ में कीर्तन करना आवश्यक है। इसलिए भजन में तात्पर्य रहने पर भी भेद तो नहीं किंतु तात्पर्य और वैशिष्ट अवश्य है, जैसे अभी बताए एक आदमी केवल कीर्तन कर रहा है, एक आदमी भाव के साथ में कीर्तन कर रहा है, एक आदमी रोमांच सुलभ और द्रवित हृदय के साथ में कर रहा है, सबका एक समान हो जाएगा नहीं, एक आदमी भाव के साथ में अर्चन कर रहा है, एक आदमी बेभाव से कर रहा है, एक आदमी वैष्णव की निंदा के साथ में ठाकुर जी का अर्चन कर रहा है, सब बराबर हो जाएगा। इस तरह से परिकरों के लिए सेवा में कुछ तात्पर्य है, जैसे कोई फूल की माला ला रहा है, कोई फूल ले आए, कोई भगवान के लिए नैवेद्य लाए, कोई उस नैवेद्य को और फूल को लेकर के ठाकुर जी के गले में दिया, लक्ष्मी जी को दे दिया गया, लक्ष्मी जी गले में माला डाल दी और वो फूल एक आदमी ले आया, माला दिखा एक व्यक्ति और दिया किसी ने भोग रंगन किया और किसी ने उनको दिया। इस तरह से तात्पर्य है, कोई निकट से सेवा कर रहा है, कोई दूर से कर रहा है। जो निकट से कर रहा है सेवा, वो यदि समझे जो दूर से सेवा करने वाले हमसे कम हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, भाव के ऊपर नहीं है। यदि चैतन्य महाप्रभु के सेवक कम गोविंद समझें, सब दामोदर राय रामानंद बहुत दूर रहते हैं और आते हैं एक घंटे के लिए, एक घंटे के लिए आते हैं और महाप्रभु जी के आंखें आंसू पोंछ करके यादें रुला करके फिर चले जाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? वो कहते हैं कि महाप्रभु जी आप रोइए, ये स्वरूप दामोदर न आते तो अच्छा, ये आकर के और रुला जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो निकट का सेवा बड़ा हुआ है ना, दूर वाली सेवा का ये सब विचार करना पड़ेगा। इसलिए निकट और दूरी का अंतर नहीं, हृदय के निकटस्थ और दूरी का, जिससे हमारे आराध्य गुरु वैष्णव और भगवान हरि गुरु वैष्णव की प्रति अधिक हो वही सेवा। सनक सनंदन सनातन ये लोग बैकुंठ में पहुंचे और वहां रहने वाले जय विजय लठिया अड़ा दिया, बच्चों समझा कि हम यहां के मालिक हैं ना, और उनको रोक दिया, आप लोग नहीं जा सकते। किंतु सनक सनंदन सनातन की भावना को नहीं समझ रहे हैं। कभी कभी क्या अधिकांश रूप में ऐसा हो जाता है, निकट समझने वाला दूरगत के भावों को वो लोग नहीं समझ पाते ये क्या था, इसलिए अपने को उसको ठीकादार समझ लेते हैं, किंतु उनकी क्या दुर्गति हुई ये हम लोगों को भी याद रखना है। इसलिए वैसा ही व्यवहार हम लोगों को भी समझ बूझ करके करना चाहिए भाई, इसलिए अभिमान न आने पाए। ये साधन की स्थिति में भी कहते हैं, जब सिद्ध अवस्था में जब ऐसा हो गया उनका नहीं होना चाहिए था क्योंकि वैकुंठ है, किंतु हम लोगों को शिक्षा देने के लिए साधन अवस्था में ये ऐसा नहीं होता। वैष्णव के प्रति कभी भी असम्मान और निंदा का भाव किसी भी स्थिति में परिस्थिति नहीं। भावना के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। वो लोग भी बड़े बुद्धिमान होते हैं, जो मान लिया कि बहुत दूर से आए हैं, समझ में वो भगवान के विश्राम के समय को नहीं जानते, कम है वो, सब जानते हैं वो लोग भी अंतर जानी है, वो सब जानते हैं। उस समय में यदि हो तो नम्र व्यवहार हाथ जोड़कर कर सकते हैं, लेकिन नहीं अभी निकल और अभी फिर तो नहीं होगा। मैं बता इसलिए जब विचार करके हम देखते हैं तो कृष्ण के जितने भी परिकर हैं वो उन परिकरों का वैशिष्ट्य भगवान के जितने और अवतार हैं या अवतारी हैं
उन लोगों से अधिक वैष्णव। कृष्ण जी के भक्त हैं और लोगों के भक्त, उन लोगों से कृष्ण के जो भक्त हैं इनका महात्म्य अधिक। यद्यपि और लोग अपने प्रभु के प्रति हाथ जोड़ करके विनय के साथ में, दीनता के साथ में सेवा करते हैं, और कृष्ण के सेवक कुछ लड़ते हैं, कुछ मान करते हैं, कुछ झगड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो भी इनकी भाव में सेवा, इसलिए इनका महत्व अधिक। तुम उन लोगों में से, ये तो कहा नहीं, अभी और आगे कहें, कहने का भाव ये है। कोई कोई कहते हैं बदंति केचित् भगवान ही कृष्ण तो सच्चिदानंद घनई घनई का मूर्ति सज्जत परम ब्रह्म परे तु सर्वे तत्पार्थदा ब्रह्म मया विमिता। अपना तो ये विचार कहा कि कृष्ण और उनके जितने अवतार हैं वो सब तत्वतः एक, कुछ कुछ वैशिष्ट रसगत और शक्ति के प्रकाश के तारतम्य से है, ये तो ठीक है, और परिकरों में भी ऐसा ही वैशिष्ट है, किंतु किसी को कम समझेगा ऐसा मत समझना। प्रकाश हो सकता है, कर सकते हैं। कोई कोई कहते हैं कृष्ण परब्रह्म, क्योंकि वे सच्चिदानंद घन ही कभी, तो क्या है सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद कृष्ण, और उनके पार्षद क्या है ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म। इसलिए केचित परमानुज इत्यादि मनुष्य कि कृष्ण ही परब्रह्म, तो परब्रह्म कैसे होंगे यदि ब्रह्म और सब होंगे तब तो इसलिए इनके जितने भी परिकार हैं वो ब्रह्म है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि तुम भी ब्रह्म हो, सर्वम ब्रह्म सर्वम फलितम ब्रह्म, जीव मात्र ही ब्रह्म है और कृष्ण क्या है। तो इसमें भी कोई गलती की बात नहीं है, ब्रह्म जाति क्या ब्रह्म ही है, इसलिए कृष्ण पर ब्रह्म नहीं होगा, यही तो विचार है। कृष्ण पर ब्रह्म है, कृष्ण माने है क्या, कृष्ण के अवतार इत्यादि सभी समस्त ये सभी पर ब्रह्म है, और उनका अंश जो जीव है, इसलिए ब्रह्मानंद किसको कहते हैं, जीवों के आनंद को आनंद कहते हैं, इसलिए जीव ब्रह्म हो कहा गया है, किंतु पर ब्रह्म जीव को नहीं कहा गया, पर ब्रह्म कृष्ण। इसलिए यदि कहीं कोई कह देता है, हम लोग इसलिए नहीं मानते कि ब्रह्म और परब्रह्म हम लोग एक ही श्रेणी में रखते हैं, इसलिए हम लोग जीव को ब्रह्म का दास मानते, दास और स्वीकार ब्रह्म नहीं, उसमें कहीं कहीं पर भूल भ्रांति होने की संभावना है, जीव को ब्रह्म करने, किंतु शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म एव भवत् ब्रह्म एव भवत्, या विशदे तदनंतरम इत्यादि ये सब कुछ ऐसे कहे गए, भागवत में भी कुछ ऐसे श्लोक। इसलिए हमारे वो पूर्व जगन्नाथपुरी वाले साधम भट्टाचार्य ब्रह्मवाद से उनको घृणा ही हो गई, मुक्ति शब्द का व्यवहार ही नहीं किया, यद्यपि मुक्ति मैंने भगवान के चरणों की भक्ति का लाभ करना ही तो साथ ही मुक्ति से उनको घृणा हो गई। इस तरह से भक्तों को भी जीव ब्रह्म इस शब्द से ही घृणा हो गई। गोप कुमार उनके विचारों को सुनकर के कुछ प्रश्न कर रहे हैं, प्रभो एक प्रश्न है मेरा, जीवों की तरफ से ये प्रश्न कर रहे हैं, भगवान इस धरातल पर पृष्ठम मयेदम भगवान धरातले तिष्ठन् किवा श्री प्रतिमा महाप्रभो शाश्वतिदानंद घना स्वयामता नीलाकनाथ पुरुषोत्तमोदता। इस धरातल पर महाप्रभु के कृष्ण के बहुत सी विग्रह
जो भगवान भी जैसे है, जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ है, बलदेव और रंगनाथ